Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
ओम शांति। मैं हृदयांका बजाज आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही शो जिंदगी बने आसान में। जैसा कि हमने देखा कि लास्ट के कुछ कड़ियों में हमने डिस्कस किया था कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट फ्री वर्क एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है हम एक बैलेंस मेंटेन करके चले, और कैसे वर्क में प्रेशर हमारा खुद का एक बनाया हुआ माइंडसेट है, वास्तव में प्रेशर नेचुरल नहीं है। इसी श्रृंखला को आज आगे ले जाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड बिहेवियरल स्पेशलिस्ट सिस्टर रितु थक्कर। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू द शो।
ओम शांति, थैंक यू सो मच।
आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे।
थैंक यू
सिस्टर। आज मैं आपसे यूजुअली एक डिस्कस करना चाहती हूँ, बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है जो एक एम्प्लॉय फेस करता है
जी,
डीलिंग विद डिफिकल्ट बॉसेस। हाँ, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि एक सुपीरियर और एक एम्प्लॉय का, सबॉर्डिनेट का, इस तरीके का रिलेशनशिप है जो बहुत खुश तो कभी भी नहीं होता। एक सबॉर्डिनेट के माइंड में हमेशा एक रनिंग कमेंट्री चलती रहती है, वेर इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिज बॉस, और वहाँ पर वो अपने बॉस को अलग अलग लेबल्स या एडजेक्टिव्स के साथ पुकारना शुरू कर देता है। माय बॉस इज लाइक दिस, माय बॉस इज लाइक, ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द बॉस। आपको क्या लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट किसके एंड से है? इज इट द बॉस जो अपनी अथॉरिटी को डिस्प्ले कर रहा है, या ये एम्प्लॉय के सेंस एंड से ही प्रॉब्लम है क्योंकि उसको बॉस का हर ऑर्डर मानना है?
मेरे अनुसार दोनों ही को अपने पर काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। द रीज़न इज़ दोनों भी जो है वो एक ईगो स्टेट से ईगो स्टेट के आधार पर व्यवहार में आ रहे हैं। यदि मेरा स्टेट ऑफ माइंड है कि मैं बॉस हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, आई एम अगेन ऑपरेटिंग उस ईगो के आधार पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने आप को सुपीरियर फील कर रहा हूँ। जैसे ही वो मुझे सुपीरियर वाली फीलिंग आ गई, मुझे लगता है बाकी सब इतना नहीं जानते हैं या मेरा ही कहना ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, यदि मैं एम्प्लॉई की बात करती हूँ, जो टीम मेंबर है उनकी बात करती हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं उस सबॉर्डिनेट वाले स्टेट ऑफ माइंड से व्यवहार करते हैं। द फैक्ट इज कि ना मैं बॉस हूँ, ना मैं एम्प्लॉई, मैं टीम मेंबर हूँ, राइट? द फैक्ट इज हम दोनों ही इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं और हम इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सो समवेयर ये जो फीलिंग है ऑफ मैं बॉस हूँ और मैं सबॉर्डिनेट हूँ, वो जो हम डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, वो डिस्टेंस ही कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट का आधार बनता है।
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बॉस की कुछ ऐसी नेचर होती है जहाँ पर वो हमेशा एम्प्लॉय को डांट लगा रहा है कि आपने ये काम समय से क्यों नहीं किया, आपको 2 दिन का समय दिया गया था, डेडलाइन मीन्स डेडलाइन। तो एक स्टर्न एक्शन या एक्सटर्न वे ऑफ स्पीकिंग, ये चीजें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर की परफॉर्मेंस को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। तो एक एम्प्लॉय कैसे अनइन्फ्लुएंस रहे इस वातावरण में, अगर वो ऐसा वातावरण कहीं वो अपने ही वर्किंग एनवायरनमेंट में देख रहा है जहाँ वो अपनी जॉब भी नहीं छोड़ सकता, एवरीथिंग इज नॉट ईजी, उसको पता है उसे वहीं काम करना है, कोई ऑप्शन भी नहीं है, एक एम्प्लॉय क्या करे ऐसी सिचुएशन में?
बिल्कुल, जैसे कोई भी इंटरेक्शन में जब हम आते हैं, सामने वाला मुझसे जैसे बात करता है, राइट? सपोज मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और आपने कुछ कह दिया। अब एक है जो आपने मुझसे कहा, राइट? और उस कहने को लेकर जो स्टोरी मैं अपने माइंड में क्रिएट करती हूँ, कहीं ना कहीं दैट इज़ व्हाट इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, राइट? जो आपने कहा वो एक फैक्ट है, जैसा आपका एक रिएक्शन था या आपने कुछ कह दिया। सपोज बॉस ने डांट लगा दी कि वर्क जो होना था टाइम पे वो नहीं हुआ या उस एफिशिएंसी से नहीं हुआ। वन इज उस चीज़ को मैं यथार्थ रीति एज इट इज़ मैं उसको लूँ कि ये एक सिचुएशन है जहाँ पे उन्होंने कुछ कह दिया, और उसके बाद दूसरा है मैं उसको लेकर बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट कर दूँ, मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा क्यों बोला, मैंने तो इतना काम किया था, इतने रात रात भर भी बैठकर मैंने इतने टारगेट्स अचीव किए, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो क्या हो गया, ये मुझे क्यों आके कहता है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज जो हम क्रिएट कर लेते हैं। नाउ अगर एज एन एम्प्लॉई मुझे उन बातों से अनइन्फ्लुएंस्ड रहना है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी होगी वो है इन स्टोरीज को कट आउट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि मेरी लाइफ में सिचुएशन ऐसी है कि मुझे वहीं रहना है, उस जॉब में रहना है, मुझे उस बॉस के साथ काम करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि सामने वाला जो भी है उनका व्यवहार ऐसे है जो रियलिटी है. अब उस रियलिटी में मैं क्या स्टोरी क्रिएट करता हूँ वो मेरे कंट्रोल में है. उनका व्यवहार वो मेरे वैसे भी कंट्रोल में नहीं है. उसको लेकर जो स्टोरी क्रिएट करता हूँ वो मेरे कंट्रोल में है. कितना समय तक मैं वो स्टोरी यहाँ पर क्रिएट करते रहता हूँ वो मेरे कंट्रोल में है.
बट रियलिस्टिकली देखा जाए रियलिटी तो फिर भी यही है कि बॉस ऐसे डांट लगा रहा है. अब मैं उसको लेकर एक अच्छी स्टोरी कैसे क्रिएट करूँ, क्योंकि ये तो बहुत नेचुरल सी बात है कि किसी ने आपको कुछ कहा, इमीडिएट इज आपके माइंड में एक रनिंग कमेंट्री तो चलेगी कि इसने ऐसा क्यों कहा.
बिल्कुल. सो जैसे मैंने कहा कि एक रियलिटी है, अब उसको लेकर कमेंट्री कितना चलनी है और मतलब कितनी कमेंट्री चलनी है, कब तक चलनी है, ये हर एक इंडिविजुअल पर अपने पर डिपेंड करता है. सपोज मेरे 3 टीम मेंबर्स हैं और हमारा कोई असाइनमेंट है जो अभी सबमिट करना है. उसी असाइनमेंट में मैं देखती हूँ कि मेरे अलग अलग टीम मेंबर्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं. सपोज मैं उन्हें कहती हूँ कि नहीं, किसी भी तरह से हमें ये प्रोजेक्ट इतने डेडलाइन में ही कंप्लीट करना है, राइट. और उस पर सपोज मुझे उन्हें कोई फीडबैक भी देना होता है कि ये अब तक जो हुआ है उसमें ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे ठीक करना है. मैं अपने टीम मेंबर्स को जो भी फीडबैक देती हूँ, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि वो हर व्यक्ति फीडबैक को अलग अलग तरीके से लेता है. क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स कि वो उस फीडबैक को लेकर वो अपने मन में क्या स्टोरी क्रिएट करता है, राइट. सो इट इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक कि मैं हो सकता है एक घंटे तक क्रिएट करूँ स्टोरी, हो सकता है एक दिन तक क्रिएट करूँ. और कई बार मैंने देखा है कि कई लोग एक एक हफ्ते तक भी स्टोरी क्रिएट करके उसी स्टोरी में अपने को फिर मूंझा हुआ महसूस करते हैं, राइट. तो हर एक का अपना अपना जो रिएक्ट करने का तरीका होता है वो अलग होता है. जितना मैं अपने पर काम करता हूँ, जितना मैं अपने उस अवेयरनेस में रहूँ कि रियलिटी इज़ कि मेरे बॉस ने मुझे कुछ फीडबैक दिया है, उसको चेक करूँ या वो ठीक है नहीं है, उसको अपनी रीति से चेक ज़रूर करूँ. अगर मुझे कुछ यू नो इट रिक्वायर्स कि मैं उनसे थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन ले लूँ कि आपने मुझे ये फीडबैक दिया, मुझे ये लगता है, उनसे बात करूँ यदि मुझे कोई क्लैरिटी चाहिए है. तो एक हो गया उस फीडबैक को समझूँ कि वो ठीक है या नहीं है, और वो फीडबैक को समझने के बाद उसको किस तरह से मैं प्रोसेस करूँ अपने यहाँ पे, वो मेरा अपना जो है वो मेरी अपनी कैपेसिटी हो जाती है.
तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर द प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने अंदर स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली रिलेट्स टू द सेल्फ. क्योंकि पिछली बार आपने यही बताया कि हमें अपने आप को मैनेज करना है तो ही हमारा काम भी मैनेज होगा.
बिल्कुल.
तो ऐसे क्या तरीके हैं जिससे एक एम्प्लॉय जब रेगुलरली एक ऐसे बॉस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है जहाँ पे वो कॉन्टिन्यूसली उसको नैग कर रहा है या कंप्लेन कर रहा है, एक एम्प्लॉय अपने आप को कैसे चैनलाइज करे?
सी, कहीं ना कहीं हम वो एक विक्टिम मोड भी क्रिएट कर लेते हैं, है तो उसी सिचुएशन में. आई एम नॉट सेइंग समबडी इज़ राइट समबडी इज़ रॉन्ग, ये नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन में रहते हुए अब मेरे लिए क्या ज़रूरी है, ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि अब मेरे लिए क्या ज़रूरी है. वन, वो काम करते हुए मेरे पास दो चॉइसेस हैं. एक, मैं अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करके वो करूँ. दूसरा है, उसमें इन्फ्लुएंस में आकर जितना कर भी पा रहा हूँ उसको भी यू नो मैं ख़राब कर दूँ क्योंकि मेरे मन की स्थिति ठीक नहीं है. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ये चाहेंगे कि हम अपने को स्टेबल रख के करें. स्टेबिलिटी का फर्स्ट यू नो पॉइंट वुड बी मैं अवेयर रहूँ अपने मन की उन स्टोरीज को लेकर. सिचुएशन बाहर जो भी है, बाहर की जो भी परिस्थिति है वो एज इट इज़ है, वो मेरे कंट्रोल में वैसे भी नहीं है. जो है सो है, लेकिन अब मैं अवेयर रहूं कि उन सिचुएशंस में मेरी यहाँ पे जो स्टोरी चलती है वो मैं ना क्रिएट करूं. सदा ही वो अवेयरनेस, बीच बीच में भी वो चेक. जैसे ही आप फील करेंगे ना कि मैं दुखी हो रहा हूं किसी चीज़ को लेकर, अपसेट हो रहा हूं, आप नोटिस करेंगे कि आप कोई ना कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं उस रियलिटी को लेकर. कहीं ना कहीं उस स्टोरी और रियलिटी को अलग करना, ये अवेयरनेस जितना हम सारे दिन में रखेंगे, आई बी एबल टू मेंटेन माय स्टेबिलिटी. मैं अपने मन को उस स्थिरता में ले पाऊंगा.
डज इट आल्सो रिलेट टू बीइंग सेल्फ सेंटर्ड? ये एक्चुअली में जब आपने सेंटर की बात करी और उस व्हील की बात करी थी, तो एक्चुअल में वास्तविकता में सेल्फ सेंटर्डनेस है क्या, अगर मुझे बैलेंस क्रिएट करना है या मुझे अनइन्फ्लुएंस्ड रहना है?
बिल्कुल, सेंटर्ड इज अ टेक्निक जहाँ पे हम अपना अटेंशन जो है वो बाहर की सभी चीज़ों से हटाकर अपने को देखना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बाहर की कोई भी चीज़ वैसे भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। द ओनली थिंग विच इज़ इन माय कंट्रोल वो है मेरा अपना व्यवहार, मेरी अपनी सोच। तो हम मेडिटेशन में एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक सेंटर्ड, अपने को सेंटर्ड करते हैं, बाहर की सभी चीज़ों से थोड़ा सा समय अपना ध्यान हटाकर हम अपने को देखना शुरू करते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, और मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या है बाहर की चीज़ों पर। और ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दे से लाइफ इज़ इनसाइड आउट। हमारे जीवन में जो भी अनुभव हमें होते हैं, हमें लगता है ये उनकी वजह से है, वो ऐसा करते हैं, ये ऐसे हैं, ये ठीक नहीं है, सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जीवन का अनुभव ये कहता है कि जितना मैं अंदर को ठीक करूं, मेरे अंदर जितना चीज़ें सेटल होते जाएंगी, ठीक होते जाएंगी, उनका इम्पैक्ट डेफिनेटली बाहर भी चीज़ों पर ज़रूर ज़रूर होगा। इन केस ऑफ यू नो अ डिफ़िकल्ट बॉस जो हमने डिस्कस किया, बॉस तो वैसे भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, बहुत कम ही वो मेरे इन्फ्लुएंस में भी है कि हाँ मैं बहुत यू नो, द ओनली थिंग इज़ कि मैं अपने को इतना ठीक करूँ, अपने को इतना सेंटर्ड करूँ कि मेरा अपना बिहेवियर इतना पॉजिटिव हो जाए अपने कार्य के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति। कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो है जब वो सामने वाले व्यक्ति को मिलती है, देखिए एक डिफ़िकल्ट बॉस भी क्यों है, कहीं ना कहीं इफ़ आई रियली सिट एंड अंडरस्टैंड कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, यदि मुझे लगता है वो बहुत गुस्सा कर रहा है, वो नैग कर रहा है, वो फीलिंग कहीं ना कहीं उनके लिए भी डिस्टर्बिंग होगी, क्योंकि शांति जो है हम सभी वही चाहते हैं।
ये भी तो हो सकता है कि बॉस अपने घर से ही डिस्टर्ब होके आया हो और वहाँ उसका कुछ डोमेस्टिक इशू हो जो उस एग्रेशन में उसने एम्प्लॉय से इस तरीके से बात करी।
एनी काइंड ऑफ नॉट सो पॉजिटिव बिहेवियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ सम पेन। जो अगर कोई गुस्सा कर रहा है, इरिटेट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उस दर्द में है और वो दर्द ही बाहर आ रहा है। उस दर्द को मैं अपने दर्द से कम नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उस दर्द को मैं अपनी पॉजिटिविटी से, अपने स्टेबिलिटी से मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। जितना उस दर्द को मैं पॉजिटिव देता हूँ, जितना मेरा व्यवहार शांति वाला, प्यार वाला, क्योंकि दर्द को कम करने के लिए देयर इज़ ओनली वन टूल, फिजिकल दर्द को मेडिसिन्स होंगी, जो अंदर के आत्मा की जो दर्द है उसको कम करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है बहुत ही निस्वार्थ स्नेह। और जैसे मैंने कहा, लाइफ इज इनसाइड आउट। यदि कोई दर्द में है, यदि कोई पेन में है और उसका बिहेवियर इस तरह से यू नो मेरे प्रति ऐसा आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे और ज़रूरत है कि मैं इतना स्टेबल रहूं, इतना कंफर्टेबल रहूं कि मेरी अपनी स्टेबिलिटी उसके दर्द को भी हील करे, ना सिर्फ मेरे दर्द।
दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी बैक टू द पॉइंट कि आप जो बार बार सेंटर्डनेस की बात कर रही हैं, इट ऑल्सो मीन्स कि I have to be selfish first to selflessly help others, and which means being at your own center.
बिल्कुल, definitely. So जितना मैं अपने को भरपूर करूँगा, उतना ही वो inside out जाएगा, जिससे वो औरों को भी मिलेगा, और automatically बाहर की चीज़ें तो automatically ठीक होंगी, राइट? लेकिन जितना मैं सेंटर्ड हूँ, जितना मैं अपने को देखता हूँ, अपने को इन वैल्यू से भरपूर करता हूँ, दैट इज़ व्हाट विल फ्लो टू एवरीथिंग अराउंड।
तो इसका मतलब पहले तो मुझे इसके लिए एक अवेयरनेस चाहिए कि ओके, ये सिचुएशन है, ये रियलिटी है, लेकिन रनिंग कमेंट्री मेरे हाथ में है, वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर बॉस आल्सो कि हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं किसी पेन में है, और उस पेन को प्रोबेबली शायद मैं हील नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट आई कैन बी लिटिल सॉफ्ट एंड हम्बल कि कोई ना कोई शायद बॉस की भी अपनी कोई प्रॉब्लम होगी। पर जब ये चीज इस तरीके का बिहेवियरल पैटर्न इलोंगेट कर जाता है, तब देन देयर कम्स अ कॉन्फ्लिक्ट, और वो कन्फ्लिक्ट आती है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव लाइफ में
जी,
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि अगर आपका एक कॉन्स्टेंट नेगेटिव इन्वायरमेंट है और आपको रोज रोज वहीं जाना है, ऐसे नेगेटिव इन्वायरमेंट के अंदर पॉजिटिविटी को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए क्या किया जाए?
कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा एटीट्यूड बहुत मैटर करेगा. एटीट्यूड मीनिंग दृष्टिकोण, चीज़ों को देखने का नजरिया. अभी हमने कई बार सुना है ग्लास आधा भरा आधा खाली, हम क्या देखते हैं, यू नो, वो एक एनालॉजी हमने कई बार बचपन से सुनी होगी. रितियंका जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एटीट्यूड कब सबसे ज़्यादा मैटर करता है?
हर सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि एटीट्यूड अपने प्रति भी मैटर करता है, कि आप लाइफ को कैसे ले रहे हैं, आप अपने काम को कैसे ले रहे हैं, आप उसके प्रति क्या सोचते हैं. अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो, अगर आप फेलियर से इन्फ्लुएंस्ड हैं, इसका मतलब कि आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव तो नहीं है.
ब्यूटीफुल. यहाँ पे एक हो गया सिचुएशंस जब सब कुछ ठीक है, राइट, जब सब कुछ ठीक है तब पॉजिटिव होना तो बहुत आसान है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट. एटीट्यूड तब मैटर करेगा जब जीवन में सब कुछ मेरे अनुसार नहीं है, मेरे बॉस मेरे अनुसार नहीं है, मेरे जो टीम है वो मेरे अनुसार नहीं है, कोई भी ऐसी बात जो मेरे अनुसार नहीं है. और फिर जब मैं अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव, दैट्स व्हेन द एटीट्यूड मैटर्स, तभी मेरा एटीट्यूड मैटर करेगा. क्योंकि जीवन का यथार्थ सत्य यही है कि बाहर की कोई भी चीज़ मेरे अनुसार
नहीं चलने वाली.
हमने अपने जीवन में जितनी भी हमारी लाइफ है, सब कुछ लाइफ में ठीक रहा, हमेशा सब कुछ ठीक है, कोई चैलेंज नहीं आया, कोई बात नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये तो कभी हुआ ही नहीं. लेकिन उन्हीं, ये तो हम जानते हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम जानते हैं कि जीवन में अप्स एंड डाउन्स आने ही हैं, और उन्हीं सिचुएशंस में मैं कितना उस चीज़ को हैंडल कर पाता हूँ या स्टेबल रख पाता हूँ अपने को, वो डिपेंड करता है मेरे एटीट्यूड पर. उसी बॉस को यदि मैं एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखूँ कि वो इतना क्रिटिसाइज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने को इम्प्रूव कर सकता हूँ. आई हैव हैड अ बॉस जो बहुत ही परफेक्शनिस्ट रही हैं, वो अपने कार्यों को लेकर और छोटी छोटी बातों को लेकर भी, जो अरेंजमेंट्स होनी है, जैसे प्रोग्राम्स होना है, प्रोग्राम्स में क्या कवर होना है, हर चीज़ को लेकर वो इतना स्पेसिफिक थे, इतना होल्डिंग थे कि कहीं ना कहीं एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ शायद जितने भी लोग मैं जानती थी और मैं इंटरेक्ट करती थी या कोऑर्डिनेट करती थी, कोई भी उनसे बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि सबको बहुत डिफिकल्ट लगता था. बट समवेयर मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि आई हैव ग्रोन अ लॉट विद दैट पर्सन. मैंने अपने प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ में बहुत ग्रो किया उनके साथ में, क्योंकि उतने परफेक्शनिस्ट को हैंडल करने के लिए आपको अपने पर बहुत काम करना पड़ रहा है. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा एटीट्यूड वो हो कि वो भले क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं और इम्प्रूव करूँगी.
तो इसका मतलब तो ये हो गया कि दिस इज़ लाइक अ गोल्डन चांस फॉर यू, कि इफ़ यू हैव अ डिफिकल्ट बॉस इन फ्रंट ऑफ यू, तो यू विल प्रॉब्ली हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि कैसे मैं और लर्न करूँ. और क्योंकि अगर कोई ज़्यादा क्रिटिकल होगा तभी तो मैं अपने आप को ठीक करूँगा. क्योंकि कहते हैं ना कि जो आपका अच्छा एक मित्र वही बन सकता है जो आपको क्रिटिसाइज करे, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आप कहाँ कहाँ से ठीक हो. आप एक बिहेवियरल ट्रेनर हैं, तो उस रीते से आप क्या समझती हैं कि चाहे डिफिकल्ट बॉस को हैंडल करने की बात हो या एक डिफिकल्ट एम्प्लॉय को हैंडल करने की बात हो, एम तो हमारा यही है कि हमारा वर्किंग कल्चर पॉजिटिव रहे.
बिल्कुल.
तो ऐसे कौन सी ज़रूरी बातें हम ध्यान में रख सकते हैं जिससे हम एक पॉजिटिव वर्किंग कल्चर मेंटेन करें?
बिल्कुल. यहाँ पे तीन चीज़ें जो बहुत बहुत क्रिटिकल हैं. कहते हैं लाइफ के सर्कल जो हैं वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड हैं. एक है सर्कल ऑफ कंट्रोल, राइट. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मेरे एनवायरनमेंट में या मेरे, यू नो, मैं जहाँ हूँ, जो मेरे कंट्रोल में है, राइट. सेकेंड है सेकेंड सर्कल ऑफ लाइफ, जो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ. एंड थर्ड सर्कल ऑफ लाइफ है सर्कल ऑफ नो कंट्रोल, जिन पे मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है, राइट. यदि मैं बॉस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि मैं टारगेट्स को कंट्रोल करने की, जैसे हम कहते हैं ना कई बार बहुत टारगेट्स है, बहुत काम है, अब मैं यदि मेरा जो जो एनर्जी है ये सोचने में लग रही है, इन सब चीज़ों के प्रति अगर मेरी एनर्जी जा रही है, कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो यथार्थ रीति मेरे कंट्रोल में है ही नहीं. मुझे कब हेल्पलेस या, यू नो, नेगेटिव फील होता है, जब मैं उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हूँ जो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल है ही नहीं. जब मेरा अटेंशन उस चीज़ पे होगा जो मेरे कंट्रोल में है, विच इज़ माय ओन स्टेट ऑफ माइंड, द वे आई फील, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसा मैं व्यवहार करता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, वो जब मैं उस पर काम करना चालू करता हूँ, जब मैं खुद पॉजिटिव रहता हूँ, जब मैं लोगों के साथ व्यवहार में आता हूँ, क्या मैं सुबह आता हूँ तो मेरा चेहरा एकदम ऐसे सीरियस सा कि पता नहीं आज तो दिन में क्या क्या हो जाने वाला है, या मैं आके सबसे पहले एक बहुत ही वार्म यू नो वे में अपना दिन स्टार्ट करता हूँ, लोगों को विश करके स्टार्ट करता हूँ, जितना मेरा अपना व्यवहार जो है वो पॉजिटिव रहेगा, मैं महसूस करूँगी कि मेरे आस पास की जो भी बातें हैं, लोग हैं, उनको मैं उसके लिए पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। तो द क्रक्स इस सारे डिस्कशन का समरी आई वुड से इज कि मैं औरों को कंट्रोल करने की जगह, ये ठीक हो जाए, टारगेट्स कम हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन ठीक हो जाए, बॉस ठीक हो जाए, इन सब के प्रति अपना एफर्ट लगाने की जगह मैं अपने को ठीक करूँ। जितना मैं खुद ठीक हूँ, हो सकता है मैं अपने व्यवहार से अपने आसपास वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकूं।
इसका मतलब यहाँ से ये भी है कि एटीट्यूडिनल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो बॉस के एंड से हो या एक एम्प्लॉय के एंड से हो। हमारा दृष्टिकोण पहला है कि हम किस एनर्जी के साथ सुबह सुबह ऑफिस में वॉक इन करते हैं। हम ये सोचते हुए जाएं कि आज पता नहीं बॉस क्या कहने वाला है, या हम ये सोचते हुए जाएं कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। तो आई थिंक ये एटीट्यूड मुझे लगता है बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच ऋतु जी फॉर दिस वैल्यूएबल डिस्कशन। थैंक यू सो मच ऋतु जी।
वेलकम।
ओम शांति।
ओम शांति।
तो आज के इस श्रृंखला से हमने ये सीखा कि जरूरत है हमें केवल और केवल दृष्टिकोण परिवर्तन करने की। एटीट्यूडनल ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है, चाहे हम एक डिफिकल्ट बॉस के साथ डील करें या एक डिफिकल्ट एम्प्लॉय के साथ डील करें। एटीट्यूड कम्स फर्स्ट। इसके लिए हमें तीन बातों को ध्यान में रखना है। पहला, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है, अगर कुछ कंट्रोल में है उसे अगर आप अपने एंड पे कुछ चेंज कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। सेकंड, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं इन्फ्लुएंस करके अपने लिए पॉजिटिव और दूसरों के लिए पॉजिटिव कर सकता हूँ। थर्ड, जो चीज़ मेरे लाइफ के सर्कल में कंट्रोल ही नहीं है, जिन पर, उन चीज़ों को कंट्रोल करने का बार बार प्रयास ना करें, क्योंकि उससे एक नेगेटिव एनर्जी मैं अपने माइंड में ही क्रिएट करूँगी, लेकिन वो एनर्जी औरों तक भी जाएगी। इसलिए ज़रूरत है सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड की। इस श्रृंखला में आप सभी हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए भी बने रहिएगा। टेक केयर। स्टे ट्यून्ड विद अस। ओम शांति।